معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. یہ پارٹ سکس ہے، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ناول بلو برڈ گروپ. اس کے مصنف مظہر کلیم ہیں اور اسے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں محمد اظہر لطیف. کیا تم واقعی مجھے زندہ چھوڑ دو گے؟ میرا وعدہ ہے کہ اگر تم نے مجھے زندہ چھوڑ دیا تو آئندہ میں کم از کم تمہارے راستے میں کبھی نہیں آؤں گی، لوگی نے کہا. تم پھر وقت ضائع کر رہی ہو، میں نے پہلے ہی تمہاری بینڈیج پر وقت ضائع کیا. اب میرے پاس مزید وقت نہیں ہے اور میں بار بار اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، اور نہ مجھے تمہاری پرواہ ہے، ٹائگر نے کہا. تم میری زندگی میں پہلے مرد ہو جو میرے سامنے اس طرح باتیں کر رہے ہو اور اس شدید روپ سے باتیں کر رہے ہو، لوگی نے کہا. اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اوکے؟ ٹائگر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین پسٹل نکال لیا. اس کے چہرے پر ایک لخت انتہائی سختی اور صفا کی جھلکنے لگی. رک جاؤ، ٹھیک ہے، میں بتا دیتی ہوں. تمہارا چہرہ اور تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم واقعی مجھے گولی مار دو گے. سنو، اور مارکو ٹینس جو ناراج کے انڈر ورلڈ کا کنگ ہے، نارا کے مضافات علاقے ڈون ڈومنیز میں ایک کلب میں بطور مالک اور جنرل مینیجر بیٹھتا ہے. اس کلب کا نام کاؤ بوائے کلب ہے. یہاں صرف طاقت کا سکہ چلتا ہے، وہاں مارکو ٹینس کا نام سپر ماسٹر ہے، لوگی نے تیز تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا. اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، ایک طرف رکھا ہوا فون بج اٹھا. جیکب کی کال ہوگی، میرے سیکشن ہیڈ کوارٹر کے انچارج کی. میرے یہاں آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، اس لیے اس نے کال کی ہوگی، لوگی نے کہا. جس کی بھی کال ہو اسے مطمئن کر دو، اگر تم نے کوئی اشارہ کیا یا کوئی غلط بات کی تو وہ بعد میں یہاں پہنچے گا. پہلے تمہاری روح تمہارے جسم سے آزاد ہو چکی ہوگی، ٹائگر نے اٹھ کر فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا. پھر اس نے فون پیس اٹھایا اور اسے لا کر اس نے لوگی کی گود میں رکھا، اور ایک ہاتھ سے ریسیور اٹھا کر اس نے اس کی کان سے لگا دیا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا. یس، لوگی بول رہی ہوں، لوگی نے کہا. کرنل ریچرڈ بول رہا ہوں، مجھے جیکب نے بتایا ہے کہ تم پوائنٹ 3 پر ہو اور وہاں کوئی آدمی پہنچایا گیا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ دوسری طرف سے ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی. ٹائگر سمجھ گیا کہ بولنے والا ریڈ وولف کا چیف کرنل ریچرڈ ہے. یس باس، ایک مقامی آدمی کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ وہ انڈر ورلڈ میں بلو برڈ گروپ کے بارے میں پوچھتا پھر رہا ہے، تو جیکب نے اسے اغوا کرا کے یہاں پوائنٹ 3 پر پہنچا دیا. میں نے اس کا میک اپ چیک کرایا لیکن وہ میک اپ میں نہیں تھا. میں نے اس سے پوچھ گچھ کی تو اس نے بتایا کہ اس کا تعلق یہاں کے ایک مخبری کرنے والے گروپ سے ہے، اور پاکیشیا سے کسی پارٹی نے اسے ٹاسک دیا کہ وہ بلو برڈ گروپ کے بارے میں تفصیلات حاصل کر کے انہیں بتائے، لیکن ابھی تک کوئی اطلاع نہیں مل سکی. میں نے اس سے اس کے گروپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس نے بتانے سے صاف انکار کر دیا، جس پر میں نے اسے گولی سے اڑا دیا ہے، لوگی نے کہا. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ابھی بلو برڈ گروپ کو کسی بھی طرح ٹریس نہیں کر سکے. میری اسپیشل ڈیفینس سیکرٹری کے ذریعے بلو برڈ گروپ کے چیف سے فون پر بات ہوئی ہے. اس نے بتایا ہے کہ اس گروپ کی انچارج ڈاکٹر ہیری سے بات ہوئی ہے. ڈاکٹر ہیری نے بتایا ہے کہ گروپ اپنا کام انتہائی تیزی سے کر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 روز بعد یہ کام مکمل ہو جائے گا، اور پھر کاغذات واپس حکومت کے پاس پہنچ جائیں گے جہاں سے کسی دور دراز لیبورٹری میں انہیں بھجوا دیا جائے گا تاکہ اس پر کام کر کے مطلوبہ کیمرہ تیار کیا جا سکے، کرنل ریچرڈ نے کہا. یس سر، پھر تو یہ لوگ ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے بلکہ خود ہی لیبورٹری تلاش کرتے رہیں گے، لوگی نے کہا. ہاں، اور سنو، اب تم بھی 2 روز تک کسی چیکنگ میں نہیں الجھو گی، کرنل ریچرڈ نے کہا. ٹھیک ہے باس، لوگی نے جواب دیا تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا تو ٹائگر نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا. جیکب کا نمبر کیا ہے؟ ٹائگر نے پوچھا. کیوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ لوگی نے کہا. میں نمبر ملاتا ہوں تو तुम उसे फोन करके कर्नल रिचर्ड का रेफरेंस देकर कह दो कि वो अब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की तलाश खत्म कर दे, टाइगर ने कहा। तुम्हें इससे क्या फायदा होगा, लॉगी ने कहा। तुम्हारी जान बच जाएगी, मैं तो वैसे ही नरम दिल का आदमी हूँ, लेकिन अगर मेरे बॉस अली इमरान तुमसे टकरा गया तो तुम्हारा अंजाम इंतहाई इबरतनाक भी हो सकता है। इस तरह 2 रोज तक तुम खामोश रहोगी तो बच जाओगी, टाइगर ने कहा। काश तुम्हारा बॉस मुझसे टकरा जाता, लॉगी ने कहा। नंबर बताओ, टाइगर ने सख्त लहजे में कहा तो लॉगी ने नंबर बता दिए। टाइगर ने फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। टाइगर ने फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। फिर लॉगी ने जैकब को पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की तलाश बंद करने का कह दिया। तो टाइगर ने रिसीवर रखा और फोन सेट उठाकर वापस मेज पर रख के वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अरे अरे रुक जाओ, मुझे तो आजाद करो, कहाँ जा रहे हो, लॉगी ने एक लफ्ज चीखते हुए कहा। मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहा हूँ। तुम इंतहाई तरबियत याफ्ता हो, इसलिए खुद ही तुम इन रॉड से आजादी हासिल कर लोगी, और अगर ना कर सको तो फिर इबरतनाक मौत मरोगी, क्योंकि जैग अपने अब यहाँ नहीं आना और जॉनसन पहले ही हलाक हो चुका है, टाइगर ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। मैं इन रॉड्स को कैसे खोल सकती हूँ, तुम तो शायद जादूगर हो, लोगी ने चीखते हुए कहा। मुझे तो तुमने कोने वाली किसी पर जकड़ा था, इसलिए मैंने बातों के दौरान अपनी टांग मोड़ी और पैर की मदद से अकब में मौजूद बटन प्रेस कर दिया। इस तरह रॉड्स गायब हो गए, लेकिन मैंने तुम्हें दानिश्ता दरमियानी कुर्सी पर जकड़ा है ताकि तुम इस अंदाज में रॉड से छुटकारा हासिल नहीं कर सको। लेकिन उसके बावजूद एक तरीका ऐसा है कि अगर तुम कोशिश करो तो आजादी हासिल कर सकती हो, टाइगर ने कहा। नहीं, मुझे आजाद कर दो, मुझे कोई तरीका मालूम नहीं है, मैं यहाँ एड़ियां रगड़ रगड़ कर भूखी प्यासी मर जाऊंगी, फॉर गॉड सेक मुझ पर रहम करो, लोगी ने रो देने वाले लहजे में कहा। उसके चेहरे पर इंतहाई बेबसी के तासुरात थे। तुमने पाकिस्तान के अहम साइंसदान डॉक्टर आरिफ को हलाक किया है और पाकिस्तान का एक अहम राज चोरी किया है, इसलिए तुम्हारी सजा तो यही थी कि तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाए, लेकिन एक तो तुम जख्मी हो और दूसरी बेबस हो, और हम मुसलमान बेबस और जख्मी पर हथियार नहीं उठाया करते, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहा हूँ, टाइगर ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। मगर मैं इस तरह भी तो मर जाऊंगी और मेरी मौत इंतहा इबरतनाक होगी, इससे तो बेहतर है कि तुम मुझे वैसे ही गोली मार दो, लॉगी ने कहा। चलो मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ, सुनो, मैंने देखा है कि रॉड्स तुम्हारे जिस्म से कहीं ज्यादा खुले हैं, लेकिन चूंकि तुमने डबल लिबास पहन रखा है इसलिए तुम इनमें फंसी बैठी हो। मेरे जाने के बाद तुम इत्मीनान से ये कोट फाड़ कर फेंक देना और फिर इन रॉड से नीचे फिसल कर या ऊपर की तरफ उठकर तुम आसानी से आजाद हो सकती हो। थोड़ी सी मेहनत कर लोगी तो जान बच जाएगी, टाइगर ने कहा। मेरे दोनों बाजुओं और हाथ हाथ भी जकड़े हुए हैं, मैं कैसे कोट उतार सकती हूँ, लोगी ने कहा। मैंने उतारने की बात नहीं की, फाड़ने की बात की है, गुड बाय, टाइगर ने कहा और एक बार फिर वापस मुड़ गया। रुक जाओ, सुनो, रुक जाओ, मेरी बात सुनो, यकलफ्त लोगी ने वहशत भरे अंदाज में चीखते हुए कहा। अब क्या बात है, क्यों मेरा वक्त जाया कर रही हो, मैं तुम्हारे जख्मी होने की वजह से तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ और तुम मेरे लिए अजाब बनती जा रही हो। मैंने अभी तुम्हारे इस मार्कोटेंस का गला दबाना है, तुमने खुद भी तो सुन लिया है कि अब सिर्फ 2 दिन का वक्त बाकी है, टाइगर ने मुड़कर गुस्सीले लहजे में कहा। अगर मैं वर्किंग पेपर्स हासिल करने में तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम मुझे आजाद कर दोगे, लोगी ने कहा। तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। इस तरह के लालच देने का कोई फायदा नहीं, मैं अपने मसले खुद हल करने का आदी हूँ, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम मुसलमान हो, तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता, मुझे रिहा कर दो, मेरा वादा कि मैं कभी तुम्हारे मुकाबिल नहीं आऊंगी, लोगी ने कहा। इसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। ठीक है, अब मैं मजीद क्या कहूँ, टाइगर ने कहा और फिर वो कुर्सियों के अकब में गया और उसने बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे कटाक की आवाज के साथ रॉड्स गायब हो गए। बस अब तो खुश हो, गुड बाय, टाइगर ने कहा और तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे मालूम था कि लोगी शदीद जख्मी है, इसलिए उसे कुर्सी से उठने और चलकर कमरे से बाहर आने में काफी वक्त लग जाएगा, जबकि इस दौरान वो वहां से काफी दूर पहुंच जाएगा। वैसे उसने लोगी को वाकई इसलिए जिंदा छोड़ दिया था कि वो इस कदर शदीद जख्मी औरत को इस बेबसी के आलम में हलाक करना अच्छा नहीं समझता था। थोड़ी देर बाद वो एक टैक्सी में सवार होकर इस कॉलोनी से काफी फासले पर मौजूद एक मार्केट के सामने उतर गया और फिर वहां से उसने एक और टैक्सी ली और उसे डॉन डोमिनीज चलने का कहकर वो अकबी सीट पर इत्मीनान से बैठ गया। उसने फैसला कर लिया था कि इस मार्को टेंस से वो डबल बी ग्रुप का एड्रेस हर सूरत में मालूम करेगा और आज ही वर्किंग नोट्स वापस हासिल करके फिर इमरान को इत्तला देगा। इमरान अपने साथियों समेत बी डब्ल्यू क्लब में मौजूद था। क्लब वाकई आला तबके के अफराद का था। इस वक्त भी क्लब आधे से ज्यादा भरा हुआ था, लेकिन वहां ना कोई शोर था और ना ही मनुष्यात का गलीज धुआं चकराता नजर आ रहा था। हॉल में मौजूद सब अफराद, जिनमें औरतें भी शामिल थीं और मर्द भी, सरगोशियों में बातें कर रहे थे और आला किस्म की शराब पीने में मसरूफ थे। चंद अफराद दूसरे मशरूबात भी पीने में मसरूफ थे। तुम यहीं बैठो, मैं जूलिया के साथ जाकर इस मास्टर जेफरे से मिलता हूँ, इमरान ने कॉफी की प्याली खत्म करके मेज पर रखते हुए कहा। हम सब ना चलें? सफदर ने कहा। नहीं, इतने ज्यादा अफराद देखकर वो जहनी तौर पर उलझ जाएगा। फिर हमारा मिशन यहाँ तो मुकम्मल नहीं होना, सिर्फ मालूमात ही हासिल करनी है, वो भी अगर मिल गई तो, इमरान ने कहा। क्या आपको शक है? सफदर ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मैंने एल्फ की बात से इशारा लेकर तुक्का लगाया है, हो सकता है ये गलत भी हो, इमरान ने कहा। तो इस एल्फ की जाकर गर्दन दबाते हैं, खामखा इधर उधर वक्त जाया करने का फायदा, तनवीर ने अपने मखसूस मिजाज के तहत कहा। अगर यहाँ नाकामी हुई तो फिर वहां का ही रुख करेंगे। आओ जूलिया, इमरान ने कहा और उसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। इसमें उठते ही जूलिया भी उठ खड़ी हुई और वो दोनों काउंटर पर पहुंच गए। यस सर, काउंटर पर मौजूद लड़की ने बड़े मुहज़्ज़िबाना लहजे में कहा। मास्टर जेफरे से मुलाकात हो सकती है? मेरा नाम माइकल है और ये है मिस मार्गरेट, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। आप किस सिलसिले में मुलाकात करना चाहते हैं? लड़की ने बड़े कारोबारी अंदाज में पूछा। हमारा भी विलिंगटन क्लब में क्लब है, लेकिन इस क्लब की सेटिंग देखकर हम बेहद मुतासिर हुए हैं और हम इस सिलसिले में मास्टर जेफरे से मिलकर इनको उनकी नफासत की दाद देना चाहते हैं, इमरान ने कहा। ओह अच्छा, साइट पर राहदारी है? इसके आखिर में उनका ऑफिस है, लड़की ने कहा। उसके साथ ही उसने काउंटर के नीचे से एक कार्ड निकाल कर उस पर दस्तखत किए और कार्ड इमरान की तरफ बढ़ा दिया। ये कार्ड रास्ते में दिखा दीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया, इमरान ने कार्ड लेते हुए कहा और उसके साथ ही उस राहदारी की तरफ मुड़ गया जो कुछ फासले पर थी। तुम इस लड़की से कुछ कहना चाहते थे लेकिन फिर तुमने कहा नहीं, बोलो क्या कहना चाहते थे, जूलिया ने कहा। कमाल है, तुम तो मेरे जहन में भी झांक लेती हो, इमरान ने कहा। बोलो क्या कहना चाहते थे तुम उससे, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कहना चाहता था कि काश कोई ऐसा कार्ड भी मिल जाता जिससे उस तक पहुंचने में कोई रुकावट ना होती, लेकिन फिर मैं इसलिए खामोश हो गया कि अगर उसने पलट कर कह दिया कि अभी तक तुम्हें मार्गरेट तक पहुंचने का कार्ड नहीं मिला, तुम मेरी बात कर रहे हो, इमरान ने जवाब दिया। वो अब राहदारी में दाखिल हो चुके थे, मुसल्ला अफराद वहां मौजूद थे, लेकिन इमरान के हाथ में कार्ड देखकर वो साइडों पर खुद ब खुद हट गए। इस दौरान वो दोनों राहदारी के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके थे। वहां एक दरवाजे के सामने एक मशीन गन से मुसल्ला आदमी मौजूद था। कार्ड मुझे दे दो, इस आदमी ने इमरान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। सॉरी, अगर तुम्हारे बॉस ने कार्ड मांग लिया तो फिर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके अंदर पहुंच जाने से ही वो समझ जाएंगे कि आपके पास कार्ड था, मुसल्ला शख्स ने कहा। अब तक कितने कार्ड इकट्ठे कर चुके हो, इमरान ने कार्ड देने वाले के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। कार्ड अजनबी अफराद के लिए होते हैं और आप पहले अजनबी हैं, मुसल्ला शख्स ने कहा, लेकिन इमरान ने इस अंदाज में सर हिलाते हुए कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया, जैसे मुसल्ला शख्स इंटरव्यू में पास हो चुका हो। मुसल्ला शख्स ने कार्ड जेब में डाला और आगे बढ़कर दरवाजे को खोल दिया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक साइड पर मौजूद मेज के पीछे एक लड़की बैठी थी। कमरे में एक औरत और एक मर्द पहले से मौजूद सोफों पर बैठे थे। इमरान और जूलिया के अंदर दाखिल होने पर इन दोनों समेत वो लड़की भी चौंक पड़ी। कार्ड हम बाहर मुसल्ला शख्स को दे आए हैं, अगर आपको जरूरत हो तो ले आओ, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो लड़की बेख्तियार मुस्कुरा दी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, तशरीफ रखें, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी लम्हे साइड पर मौजूद दरवाजा खुला और वो मर्द जिन्होंने हाथ में ब्रीफ केस उठाए हुए थे बाहर आए और तेज तेज कदम उठाते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। तो इस लड़की के इशारे पर वहां पहले से मौजूद मर्द और औरत दोनों उठकर दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। इमरान और जूलिया दोनों एक साइड पर रखे हुए सोफे पर बैठ गए। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाजा खुला और वो मर्द और औरत बाहर आकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। मिस्टर माइकल और मिस माइग्रेट, तशरीफ ले जाएं, बॉस आपके मुंतजिर हैं, लेकिन आपके पास 10 मिनट का वक्त होगा, लड़की ने इसे मुखातिब होकर कहा। 10 मिनट तो सलाम दुआ में लग जाएंगे, हमने तो मास्टर जैफरे से लंबी बातें करनी है, इमरान ने उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। मिस्टर माइकल, सॉरी, इससे ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता, लड़की ने भी बड़े कारोबारी लहजे में कहा। मिस मार्गरेट, मेरा ख्याल है कि तुम इन साहिबा के साथ बैठो और टाइम वॉच करो, मैं अंदर जैफरे से मुलाकात कर लूं, इमरान ने जूलिया से कहा। पहले कुछ अंदाजा तो हो जाए, फिर आगे बात होगी, जूलिया ने जवाब दिया। तो इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए दरवाजा खोला और अंदर राहदारी में दाखिल हो गया। राहदारी के अख्ताम पर एक खासा बड़ा ऑफिस था, जहां लकड़ी की बनी हुई भारी ऑफिस टेबल के पीछे एक लंबे कद और अकड़े हुए जिस्म का नौजवान बैठा था। इसने धारीदार हल्के ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था। बालों की तराश फराश से वो कोई फिल्मी हीरो दिखाई दे रहा था। खुश आमदीद जनाब माइकल और मिस मार्गरेट, मेरा नाम जेफरे है और मुझे बेहद मुसर्रत है कि आपको हमारा क्लब पसंद आया है, जेफरे ने उठकर बाकायदा इन दोनों का इस्तकबाल करते हुए कहा। उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो इमरान ने उससे मुसाफा किया, लेकिन जूलिया इस दौरान सोफे पर जाकर बैठ चुकी थी। जेफरे ने चौंक कर एक लम्हे के लिए जूलिया को देखा और फिर होंठ भींचे वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। विलिंगटन में आपका क्लब कहाँ है? मैं अक्सर विलिंगटन जाता रहता हूँ, जेफरे ने मुस्कुराकर कहा। जूलिया से मुसाफा ना करने की वजह से उसके चेहरे पर चंद लम्हों के लिए जो तकद्दुर सा छाया था वो अब दूर हो गया था। हमारे क्लब का नाम ब्लू बर्ड है, वैसे आम तौर पर उसे डबल बी भी कहा जाता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जैसे बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर यकलख्त इंतहाई हैरत के तासुरात थे। ये कैसे हो सकता है, जैफरे के मुंह से बेख्तियार निकला। क्यों नहीं हो सकता, मार्कोटेंस चाहे तो पूरी दुनिया में ब्लू बर्ड नाम के क्लब कायम कर सकता है, इमरान ने कहा तो जैफरे की हालत देखने वाली हो गई। आप कौन हैं? असल बात बताएं, आप मेरे पास क्यों आए हैं, जेफरे ने इंतहाई खुश लहजे में कहा। मास्टर जेफरे, बेहतर है कि खुलकर बात हो जाए, हमने ब्लू बर्ड के साइंसदानों के ग्रुप के बारे में मालूमात हासिल करनी है, इमरान ने कहा। सॉरी मिस्टर, आप तशरीफ ले जा सकते हैं, मैं तो ये नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ, जेफरे ने मुंह बनाते हुए कहा। इसके लहजे में यक लख्त इंतहाई सख्ती उभर आई थी। मिस मार्गरेट, आप बाहर सेक्रेटरी के पास जाएं, मैंने तो मास्टर जेफरे से चंद खास बातें करनी है, इमरान ने कहा तो जूलिया सर हिलाती हुई उठी और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कैसी बातें, जेफरे ने चौंक कर कहा, लेकिन उसके साथ ही उसका हाथ बिजली की सी तेजी से आगे को हुआ तो उसके हाथ में मशीन पिस्टल मौजूद था, न जाने इसने मेज की दराज से निकाला था या जेब से। मुझे यकीन है मिस्टर जेफरे के हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मालूम तो होगा कि ब्लू बर्ड ग्रुप इन दिनों पाकिस्तान से चोरी किए जाने वाले एक फार्मूले के वर्किंग नोट्स पर काम कर रहा है और हमने ये वर्किंग नोट्स वापस लेने हैं, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। आपका नाम अली इमरान है, अचानक जेफरे ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। ये नाम आपको किसने बताया? इमरान ने चौंक कर पूछा। मेरे वालिद लॉर्ड हम्फ्रे ने, जेफरी ने जवाब दिया। तो इस बार इमरान बेख्तियार उछल कर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। क्या तुम वाकई लॉर्ड हम्फ्रे के बेटे हो? इमरान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मैं लॉर्ड हम्फ्रे का छोटा बेटा हूँ। बैठो, मैं अब तुम्हें तफसील बताता हूँ, जेफरी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। इसने मशीन पिस्टल वापस दराज में रख दिया था। मुख्तसर बात करना, क्योंकि मेरे साथी बाहर हॉल में हमारा इंतजार कर रहे हैं, इमरान ने कहा। ओ, तो फिर ऐसा है कि आप सब लोग ब्लू स्टार क्लब पहुंच जाएं, मैं वहां आ रहा हूँ। फिर वहां बैठकर तफसील से बात होगी, जेफरी ने कहा। किसकी जगह है? इमरान ने पूछा। उसी की जगह है जिसके लिए आप आए हैं। डैडी ने मुझे आपके बारे में खुसूसी हिदायत दी हैं, जेफरी ने कहा। ओके, हम ब्लू स्टार क्लब पहुंच रहे हैं। वहां हॉल में हम ही होंगे, इमरान ने उठते हुए कहा। नहीं, आप काउंटर पर लॉर्ड हम्फ्रे का नाम लेंगे तो आपको स्पेशल रूम में पहुंचा दिया जाएगा, जेफरी ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो बाहर आया तो जेफरी की लेडी सेक्रेटरी बेहोश पड़ी थी, जबकि जूलिया बड़े चौकन्ने अंदाज में वहां मौजूद थी। आओ जूलिया, इमरान ने कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्या हो गया इतनी जल्दी वापसी? जूलिया ने कहा। एक और जगह तफसील से बात होगी, अब यकीनन मसला हल हो जाएगा, इमरान ने कहा और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों हॉल में पहुंचे तो इमरान अपने साथियों को बाहर आने का इशारा करके बाहर आ गया। क्या हुआ इमरान साहब? सफदर ने बाहर आते ही पूछा। हालात अचानक मवाफिक हो गए हैं मास्टर जेफरे, लॉर्ड हम्फ्रे का छोटा बेटा है और लॉर्ड हम्फ्रे एक्रीमियन ग्रेड एजेंसी का बड़े तवील अरसे तक चीफ रहा है। वो इंतहाई समझदार और दूरंदेश आदमी है। जेफरे को जब मालूम हुआ कि पाकेशी सीक्रेट सर्विस और इमरान यहाँ आ रहे हैं तो उसने अपने डैडी लॉर्ड हम्फ्रे से बात की और लॉर्ड हम्फ्रे ने इसे चंद खसूसी हिदायत दी हैं। इसलिए अब हम एक और क्लब में जा रहे हैं जहाँ तफसील से बातें होंगी, क्योंकि शायद इस क्लब की निगरानी हो रही है, इमरान ने कहा। इस दौरान वो सब पार्किंग में पहुंच गए जहाँ उनकी कार मौजूद थी। कार की ड्राइविंग सीट पर इमरान बैठ गया, उसके साथ जूलिया बैठ गई, जबकि कैप्टन शकील, सफदर और तनवीर अकबी सीट पर एक दूसरे में घुस कर बैठ गए। कहाँ जाना है हमने? सफदर ने अकब से पूछा। ब्लू स्टार क्लब, इमरान ने जवाब दिया और उसके साथ ही वो कार पार्किंग से निकाल कर कंपाउंड गेट से बाहर ले आया। फिर तकरीबन 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो एक दो मंजिला इमारत के कंपाउंड में मुड़ गए। इमारत पर ब्लू स्टार क्लब का नेविन साइन बोर्ड जल बुझ रहा था। पार्किंग में कार रोक कर वो नीचे उतरे। इमरान ने कार लॉक की और फिर पार्किंग बॉय से कार्ड लेकर वो तेज तेज कदम उठाते हुए मेन गेट की तरफ बढ़ते चले गए। क्लब का हॉल काफी बड़ा था और उसे शानदार अंदाज में सजाया गया था। एक तरफ खासा बड़ा काउंटर था जिसके एक कोने में एक लड़की स्टूल पर बैठी फोन सुनने में मसरूफ थी, जबकि काउंटर पर मौजूद बाकी 3 लड़कियां वेटर्स को सर्विस देने में मसरूफ थीं। इमरान अपने साथियों समेत सीधा काउंटर की तरफ बढ़ गया। यस सर, फोन सुनने वाली लड़की ने इतने लोगों को काउंटर की तरफ आते देख कर चौंक कर पूछा और रिसीवर रख दिया। लॉर्ड हम्फ्रे से हमारी मुलाकात तय है, इमरान ने कहा। ओह अच्छा सर, लड़की ने बेख्तियार स्टूल से उठते हुए कहा और फिर उसने साइड पर खड़े हुए एक नौजवान को इशारे से बुलाया। यस मैडम, इस नौजवान ने जिसने बाकायदा यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तेजी से करीब आकर कहा। इन साहेबान को स्पेशल मीटिंग रूम में पहुंचाओ, छोटे लॉर्ड इनके वहां मुंतजिर हैं, लड़की ने इस नौजवान से कहा। ओह यस सर, आइए सर, नौजवान ने कहा और वापस मुड़ गया। आप बड़े लॉर्ड का इंतखाब हैं या छोटे लॉर्ड का? इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। बड़े लॉर्ड का, लड़की ने भी मुस्कुराते हुए कहा। इसका मतलब है कि बुढ़ापे के बावजूद कुछ रौके कायम है, इमरान ने कहा तो लड़की का चेहरा बेख्याल जगमगा उठा और इमरान आगे बढ़ गया। क्या तुम्हें किसी हकीम ने नुस्खे में लिख कर दिया है कि तुमने लड़कियों से फजूल बातें जरूर करनी है? जूलिया ने झल्लाए हुए लहजे में कहा। इससे बैटरी चार्ज हो जाती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो जूलिया ने कोई जवाब देने के बजाय होंठ नीच लिए, क्योंकि इस दौरान वो राहदारी में चलते हुए एक दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो रहे थे। ये एक हॉल नुमा कमरा था जिसे वाकई मीटिंग रूम के अंदाज में सजाया गया था। तशरीफ रखें, इस नौजवान ने कहा जो इन्हें यहाँ तक लेकर आया था, और इमरान और इसके साथी कुर्सियों पर बैठ गए। आप क्या पीना पसंद फरमाएंगे, नौजवान ने पूछा। एप्पल जूस, इमरान ने कहा तो नौजवान ने मुअद्दबाना अंदाज में सर हिलाया और वापस मुड़कर दरवाजे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो ट्रॉली धकेलता हुआ वापस अंदर दाखिल हुआ। ट्रॉली में एप्पल जूस के बड़े बड़े गिलास मौजूद थे। इसने एक एक गिलास उठाकर उसके सामने दरमियानी मेज पर रखा और फिर ट्रॉली एक तरफ करके वो मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। इमरान ने गिलास उठाया और मुंह से लगाकर एक घूंट लिया। क्या ये मशरूब काबिले एतबार है, सफदर ने कहा। हाँ लॉर्ड हम्फ्रे हमसे कोई धोखा नहीं कर सकता, इमरान ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। इसी लम्हे दरवाजा खुला और एक लंबे कद, भारी जिस्म और चौड़े और बारोब चेहरे का मालिक बूढ़ा आदमी, जिसके हाथ में छड़ी थी और वो छड़ी पकड़े उसका सहारा लेकर चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे मास्टर जेफरे बड़े मुअद्दबाना अंदाज में चल रहा था। इमरान उनके उनके अंदर दाखिल होते ही उठकर खड़ा हो गया। उसके उठते ही उसके साथी भी उठकर खड़े हो गए। बड़े तवील अरसे के बाद तुमसे मुलाकात हो रही है, पहले अंदर दाखिल होने वाले बावकार आदमी ने मुस्कुराते हुए मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। शुक्र है कि इस दुनिया में ही मुलाकात हो रही है, इमरान ने जवाब दिया तो वह आदमी बेख्तियार हंस पड़ा। खातूनो हजरात, मेरा नाम लॉर्ड हम्फ्रे है। मैं तवील अरसे तक एक्रीमिया की रेड एजेंसी का चीफ रहा हूँ, और इस दौरान इमरान से लड़ाइयाँ भी हुई और दोस्ती भी चलती रही। आज हमारी मुलाकात तकरीबन 8 साल बाद हो रही है। ये मेरा बेटा है जेफरे। तशरीफ रखें, लॉर्ड हम्फ्रे ने जूलिया और इमरान के दूसरे साथियों से मुखातिब होकर कहा, और फिर इन्हें बैठने का कहकर वो खुद भी एक साइड पर मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। उसके बैठते ही उसका बेटा जेफरे भी बैठ गया। जेफरे ने आज से चंद रोज पहले मुझे बताया कि उन्हें सरकारी तौर पर आगाह किया गया है कि पाकेशिया से सीक्रेट सर्विस की टीम इमरान की सरकर्दगी में नाराज आ सकती है, इसलिए वो चौकन्ना और होशियार रहें। चूंकि इमरान के बारे में अक्सर बातें होती रहती हैं, इसलिए मेरे बेटे ने जब मुझे ये बात बताई तो मैं समझ गया कि मामला क्या हो सकते हैं। मेरा बेटा बजाहिर तो क्लब चलाता है, लेकिन दरअसल उसका ताल्लुक क्रीमिया की एक खुफिया एजेंसी से है। जब तमाम सूरत हाल मेरे सामने आई तो मैंने जेफरे को हिदायत की कि अगर इमरान या उसका कोई साथी उसके क्लब पहुंच जाए तो वो इसके खिलाफ कोई एक्शन लेने के बजाय पहले मुझे उससे मिलवा दे। चुनाचा ऐसा ही हुआ। जैसे ही इमरान इस खातून के साथ जेफरे के ऑफिस पहुंचा, जेफरे ने इमरान को पहचान लिया और अब हम यहाँ इस क्लब में मौजूद हैं जो मेरी जाती मिल्कियत है और इसका कोई ताल्लुक किसी सरकारी एजेंसी से नहीं है। और मुझे खुशी है कि मैं दुनिया के अजीम सीक्रेट एजेंटों से मिल रहा हूँ, लॉर्ड हम्फ्रे ने बड़े पुरखलूस लहजे में कहा तो इमरान के साथियों के चेहरों पर यकलख्त बहार से खिल उठी। मुझे लगता है कि आखिर में यही आवाज आएगी, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 1 रुपया, अचानक इमरान ने कहा तो लॉर्ड हम्फ्रे और जेफरे दोनों चौंक पड़े। क्या ये कोई लतीफा है, लॉर्ड हम्फ्रे ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, हमारे मुल्क में दो साहिबान को गुफ्तगू करने का बेहद शौक था। इस शौक को पूरा करने के लिए वो दोनों एक होटल में गए। वेटर ने बार बार इनसे पूछा कि वो क्या खाना पीना पसंद करेंगे, लेकिन बातों के दौरान एक साहब मेज पर पड़े हुए गिलास से खेल रहे थे कि अचानक गिलास नीचे गिरा और टूट गया। वेटर ने आकर इसकी खिड़कियां इकट्ठी की, मेज साफ किया और चला गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों जब बातें करके थक गए तो वो उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजे के करीब काउंटर था जिस पर होटल का मालिक मौजूद था। इन दोनों का ख्याल था कि चूंकि उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए उन्होंने अदायगी नहीं करनी है। लेकिन जब वो दोनों काउंटर तक पहुंचे तो उनके अकब से वेटर ने आवाज दी कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 1 रुपया, और मुझे लगता है कि हम भी यहाँ बैठ कर बातें करते रह जाएंगे और हमें किसी टूट फूट का जुर्माना देना पड़ेगा, इमरान ने तस्वीर से जवाब देते हुए कहा। तो लॉर्ड हम्फ्रे बेख्तियार हंस पड़ा। मैं तुम्हारी बात का मतलब समझ गया हूँ जेफरे, तुम जाओ, ग्लास की कीमत मैं खुद इनसे वसूल कर लूंगा, लॉर्ड हम्फ्रे ने अपने बेटी से कहा। यस डैडी, जेफरे ने मुस्कुराते हुए कहा और उठकर सलाम किया और कमरे से बाहर चला गया। माशाल्लाह, इस कदर सआदतमंद बेटा तो हर बात की ख्वाहिश होती है, मेरे डैडी समेत, इमरान ने कहा तो कमरा बेअख्तियार कहकहों से गूंज उठा और सबसे बुलंद कहकहा लॉर्ड हम्फ्रे का था। तुम्हारी बातों का मतलब मैं समझता हूँ इमरान, असल मौजू पर बात नहीं हो रही और हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैंने इसलिए जेफरे को बाहर भेजा है क्योंकि जेफरे ने राजदारी का बाकायदा हलफ उठाया हुआ है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो किसी उलझन में पड़े। और मुझे ये भी मालूम है कि अगर तुम जेफरे तक पहुंच गए हो तो फिर मालूमात हासिल किए बगैर वापस भी नहीं जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें तफसील बता देता हूँ। मुझ पर यकीन करना या ना करना तुम्हारी अपनी मर्जी है, लॉर्ड हम्फ्रे ने कहा। आप पर तो हमें मुकम्मल एतमाद है, आपके आने से पहले मैंने अपने साथियों से भी यही बात कही थी, क्योंकि आप भी बुजुर्गों की उस नस्ल में से हैं जो उसूलों पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इस एतमाद का शुक्रिया जेफरे ने, जब मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मैंने अपने तौर पर भी मालूमात हासिल की हैं। रेड वुल्फ की सुपर एजेंट लॉगी, जिसे जिसे नए पाक एशिया के डॉक्टर आरिफ को चक्कर देकर उससे वर्किंग नोट हासिल किए हैं, वो गई तो दरअसल पिन कैमरा लेने थी, लेकिन असल कैमरा किसी ऐसे साइंसदान की तहवील में था कि वो इसे किसी सूरत हासिल नहीं कर सकती थी। चुनाचा उसने रेड वुल्फ के चीफ कर्नल रिचर्ड से बात की तो कर्नल रिचर्ड ने मशवरे के बाद उसे इजाजत दे दी कि वो वर्किंग नोट्स ही लेकर आ जाए, यहाँ के साइंसदान खुद ही इस पर काम कर लेंगे। चुनाचा वर्किंग नोट्स वो लेकर वापस आ गई। मुख्तसर ये कि इन वर्किंग नोट्स पर काम करके उन्हें दुरुस्त करने के लिए हुकूमत की तरफ से साइंसदानों के एक खास ग्रुप के पास भिजवा दिया गया। इस ग्रुप का नाम ब्लू बर्ड या डबल बी है, और जेफरे ने मुझे बताया है कि तुमने इससे ब्लू बर्ड की बात की है, इसका मतलब है कि तुम्हें इसके बारे में मालूम है और अब तुम इसकी तफसील जानना चाहते हो। तो असल बात यह है कि इस ग्रुप को इंतहाई खुफिया रखने के लिए सारा सेटअप किया गया है, आज तक इस ग्रुप को कोई ट्रेस नहीं कर सका। जहां तक मेरी मालूमात है, इस ग्रुप में चोटी के साइंसदान शामिल हैं, जिनकी तादाद 10 है, और इनका इंचार्ज डॉक्टर हैरी नाम का साइंसदान है। और जिस तरह तुम्हारी पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का इंतजामी इंचार्ज सेक्रेटरी खारजा सर सुल्तान है, इस तरह इस ग्रुप का इंतजामी इंचार्ज नाराक का बहुत बड़ा गैंगस्टर और बदमाश मार्को टेंथ है। लेकिन मार्को टेंथ टेंथ बिल्कुल इस तरह खुफिया रहता है जिस तरह पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का चीफ X2 रहता है, लॉर्ड हम्फ्रे ने मुसलसल बोलते हुए कहा। लॉर्ड साहब, आप प्लीज एक बदमाश से चीफ का मुवाजना मत करें, ये हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा, अचानक जूलिया ने कहा। ओ, आई एम रियली सॉरी, मैं माजरत खा हूँ, मैंने सिर्फ अपनी बात समझाने के लिए ये मिसालें दी हैं, वरना मुझे मालूम है कि जनाब चीफ X2 और जनाब सर सुल्तान बहुत नामवर शख्सियात हैं। बहरहाल मुझसे ये हिमाकत हुई है, मुझे आपके जज्बात का एहसास करना चाहिए था, लॉर्ड हम्फ्रे ने इंतहाई माजरत भरे लहजे में कहा। तो फिर हमें वाकई गिलास तोड़कर वापस चले जाना चाहिए, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो लॉर्ड हम्फ्रे बेख्तियार हंस पड़े। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्कोटेंस के बगैर तुम किसी सूरत ग्रुप तक नहीं पहुंच सकते, और मार्कोटेंस के बारे में मुझे सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि नाराक के मुजाफाती इलाके डॉन डोमिनीज में काववॉय नामी क्लब का वो मालिक है। इस क्लब का जनरल मैनेजर सुपर मास्टर कहलाता है, और सिर्फ वही जानता है कि मार्कोटेंस किस वक्त कहाँ मौजूद हो सकता है, लॉर्ड हम्फ्रे ने कहा। ये सुपर मास्टर तुमसे तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ होगा, इमरान ने कहा। तो लॉर्ड हम्फ्रे बेख्तियार एक तरफ एक तवील सांस ले लिया। तुम ऐसा सोचने में हक बजानिब हो इमरान की, के तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मैं सुपर मास्टर को फोन करके तुम्हारे बारे में इत्तला दे दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरा अब किसी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है और ना मुझे किसी से कोई दिलचस्पी है। मैं सिर्फ अपने बेटे जेफरे को तुम्हारे हाथों से बचाना चाहता था, वरना ये बात उसे भी मालूम है। लेकिन वो नौजवान है, वो हड्डियां तोड़वा कर भी ये सब कुछ ना बताता। और तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मैं खुद सामने ना आता। बहरहाल मुझ पर एतमाद करो, मैंने ना तुमसे कुछ छुपाया है और ना मेरी किसी से कोई बात होगी। तुमसे पुराने ताल्लुकात थे जिसकी तजदीद के लिए हमारी यहाँ मुलाकात हुई है, लॉर्ड हम्फ्रे ने कहा। शुक्रिया लॉर्ड साहब, उम्मीद है आइंदा जल्द मुलाकात होगी। लेकिन क्या आपके पास डॉन डोमिनीज का तफसील नक्शा है? मैंने तो ये नाम भी पहली ही बार सुना है, इमरान ने कहा। ये नाराक के शुमाल मगरिब में है, यहाँ से तकरीबन 200 मील के फासले पर। नक्शा तुम्हें काउंटर से मिल जाएगा। और अब मुझे इजाजत, गुड बाय, लॉर्ड हम्फ्रे ने उठते हुए कहा। और फिर सर झुकाकर उसने सलाम किया और मुड़कर तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद इमरान साथियों समेत वापस हॉल में पहुंच चुका था। काउंटर से नक्शा लेकर वो सब क्लब से बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद इमरान की कार डॉन डोमिनीज की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। काउबॉय क्लब के स्पेशल ऑफिस में चौड़े चेहरे और सांड की तरह फैले हुए जिस्म का मालिक एक आदमी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में शराब की बोतल थी और उसने सूट पहना हुआ था। टाई सुर्ख रंग की थी, उसकी ठोड़ी किसी हथौड़े जैसी थी। उसकी आंखों में तेज शैतानी चमक थी। तंग पेशानी और इस पर बालों का टोकरा सा रखा नजर आ रहा था। इस आदमी का मजमूई तासुर ये था कि वो सफाक और भेड़िए किसी खसूसियात रखने वाला आदमी था। ये मार्को टेंस था, जिसका नाम पूरे नाराक में शैतान की तरह मशहूर था। लेकिन वो खुद नाराक से 200 मील दूर इस छोटे से कस्बे में रहता था। यहाँ उसे सब सुपर मास्टर कहते थे। उसी क्लब की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर उसकी रिहाइशगाह थी। ये पूरी मंजिल उसके लिए रिजर्व थी और इसकी इजाजत के बगैर इंसान तो इंसान, कोई परिंदा भी इस मंजिल पर नहीं जा सकता था। ये सुपर मास्टर किस वक्त आराम करने ऊपर चला जाए ये उसकी अपनी मर्जी थी, और किस वक्त ऊपर से ऑफिस में आकर बैठ जाए ये भी उसकी अपनी मर्जी थी। वो बैठा शराब पी रहा था कि अचानक मेज पर फोन की घंटी बज उठी, तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सुपर मास्टर ने अपने मखसूस लहजे में कहा। दारुल हुकूमत से लॉगी की कॉल है बॉस, दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। लॉगी की? ओह अच्छा, करावात, सुपर मास्टर ने चौंक कर कहा। हेलो, लॉकी बोल रही हूँ, चंद लम्हों बाद एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। लेकिन बोलने वाले की आवाज और लहजे से ही लगता था कि वो कराहते हुए बात कर रही है। सुपर मास्टर बोल रहा हूँ लॉगी, क्या बात है, ये तुम्हारी आवाज में कराह क्यों शामिल है? सुपर मास्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं शदीद जख्मी हूँ, गो मैंने बैंडेज करा ली है, लेकिन इसके बावजूद जख्म गहरे होने की वजह से बोलने से दर्द और तकलीफ होती है, लोगी ने जवाब देते हुए कहा। ओह, ये सब कैसे हुआ? सुपर मास्टर ने चौंक कर पूछा। यही बात बताने के लिए तो मैंने कॉल किया है। पाकेश या सीक्रेट सर्विस तुम्हारे ग्रुप ब्लू बर्ड को तलाश करती फिर रही है। इस ग्रुप का लीडर इमरान है, लेकिन ये ग्रुप तो शायद अभी नाराक नहीं पहुंचा। अलबत्ता इस इमरान का शागिर्द टाइगर यहाँ पहुंच चुका है। मेरे आदमियों ने उसे चेक होने पर अगवा करके एक पॉइंट पर पहुंचा दिया। मैं उससे मालूमात हासिल करने के लिए वहां गई, तो इससे मालूम हुआ कि इसे मालूमात मिली है कि इस ग्रुप का सुराग डॉन डोमिनिस के काउबॉय क्लब के सुपर मास्टर से मिल सकता है, और वो वहां जाना चाहता था कि उससे अगवा कर लिया गया। इस पॉइंट पर मेरा एक ही आदमी था। मैंने मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अपने आदमी से कोड़ा मंगवा कर इस टाइगर पर कोड़े बरसाने का हुक्म दिया ही था कि अचानक उसकी रस्सियां खुल गईं। मेरे आदमी जॉनसन ने उसे एक रस्सी की मदद से कुर्सी पर बांध रखा था। उससे गलती हो गई कि उसने दुरुस्त तौर पर गांठ नहीं लगाई थी, चुनाचा इसने आजाद होते ही कोड़ा जॉनसन से छीन लिया। और उसके बावजूद कोशिश के हम उससे कोड़ा वापस हासिल नहीं कर सके, और उसने जॉनसन को तो इस कदर कोड़े मारे कि वो हलाक हो गया। उसने जॉनसन को इस कदर कोड़े मारे कि वो हलाक हो गया, जबकि मैं कोड़ों की जरबों से बेहोश हो गई। और वो ये समझा कि हम दोनों ही हलाक हो गए हैं, इसलिए वो वहां से चला गया। अब मुझे होश आया तो मैंने मेडिकल बॉक्स की मदद से जख्मों पर मरहम लगाकर बैंडेज की, और फिर मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ। वो यकीनन तुम्हारे पास ही पहुंचेगा, लोगी ने तफसील बताते हुए कहा। उसका हुलिया क्या है? सुपरमास्टर ने सीधे होकर बैठते हुए कहा। वो मकामी मेकअप में है। उसका मेकअप सुपर मेकअप वॉशर से भी वॉश किया गया, लेकिन वॉश नहीं हुआ। अलबत्ता बाद में उसने खुद ही बता दिया था कि वो टाइगर है और मेकअप में है, लोगी ने जवाब दिया। तुम इसका हुलिया और कदोकामत की तफसील बता दो, सुपर मास्टर ने इस बार तेज लहजे में कहा, तो दूसरी तरफ से लॉकी ने तफसील बता दी। ये अकेला है या इसका कोई साथी भी है? सुपर मास्टर ने पूछा। अकेला है, लॉकी ने जवाब दिया। ओके, अब तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा इंतकाम भी इससे लिया जाएगा, सुपर मास्टर ने कहा। और उसके साथ ही उसने क्रेडल दबाया और टोन आने पर उसने एक के बाद दीगरे कई बटन प्रेस कर दिए। यस, सार्डूम बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज सुनाई दी। सुपर मास्टर बोल रहा हूँ, सुपर मास्टर ने तेज लहजे में कहा। ओह यस सुपर मास्टर, दूसरी तरफ से कहा गया। एक हुलिया नोट करो, सुपर मास्टर ने कहा, और उसके साथ ही उसने लोगी का बताया हुआ हुलिया तफसील से बताना शुरू कर दिया। हुलिया बताने के बाद उसने कदो कामत और लिबास की तफसील भी बता दी, क्योंकि लोगी ने कदो कामत के साथ साथ लिबास की तब भी तफसील बताई थी। यस सुपर मास्टर, सार्डूम ने मुद्दबाना लहजे में कहा। ये आदमी दारुल हुकूमत से डॉन डोमिनीज आ रहा है या पहुंच चुका होगा, और यकीनन हमारे क्लब में ही आएगा। तुम पूरे इलाके में उसे फौरी चेक कराओ, और जैसे ही और जहां भी वो नजर आए उसे गैस से बेहोश करके नंबर 4 में पहुंचा दो और मुझे कॉल करो, सुपर मास्टर ने कहा। जिंदा या मुर्दा? सार्डूम ने कहा। अहमक आदमी, गैस से बेहोश करने का कहा है ताकि इससे मैं पूछताछ कर सकूं कि डॉन डोमिनीज और मेरे बारे में उसे किसने बताया है, सुपर मास्टर ने कहा। यस सुपर मास्टर, हुक्म की तामील होगी, दूसरी तरफ से कहा गया। पूरी तरह मोहतात रहना, यह आदमी आम नहीं है बल्कि इंतहाई तरबियत याफ्ता है, सुपर मास्टर ने कहा। यस सुपर मास्टर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो सुपर मास्टर ने एक बार फिर क्रेडल दबाया और टोन आने पर दोबारा नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ब्राउन बोल रहा हूँ, रब्ता कायम होते ही एक भारी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। सुपर मास्टर फ्रॉम दिस एंड, सुपर मास्टर ने तेज लहजे में कहा। यस सुपर मास्टर, हुक्म फरमाइए, दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा यकलख्त मुअद्दबाना हो गया। सार्डूम को मैंने हुक्म दिया है कि वो एक आदमी को बेहोश करके तुम्हारे पॉइंट पर पहुंचा दे, तुमने उसे जंजीरों में जकड़ देना है, क्योंकि वो तरबियत याफ्ता आदमी है, इसलिए हर तरह से मोहतात रहना और फिर मुझे इत्तला देना। मैं खुद पॉइंट 4 पर आकर उससे पूछगछ करूंगा, सुपर मास्टर ने कहा। यस सुपर मास्टर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो सुपर मास्टर ने रिसीवर क्रेडल पर रखा और एक बार फिर शराब की बोतल उठाकर उसने मुंह से लगा ली। फिर न जाने कितना वक्त गुजर गया कि फोन की घंटी बजी, तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस सुपर मास्टर, सार्डूम बोल रहा हूँ, सुपर मास्टर, दूसरी तरफ से सार्डूम की आवाज सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? सुपर मास्टर ने चौंक कर पूछा। बॉस, ये आदमी टैक्सी में सवार होकर यहाँ पहुंचा और सीधा हमारे क्लब के सामने टैक्सी से उतरा। उसके उतरते ही हम उसको पहचान गए। टैक्सी के वापस जाने के बाद वो क्लब में दाखिल हुआ ही था कि इस पर गैस अटैक करके उसे बेहोश कर दिया गया है, और फिर आपके हुक्म के मुताबिक इसे पॉइंट 4 पर पहुंचा दिया गया है, सार्डूम ने तफसील से रिपोर्ट देते हुए कहा। ओके, सुपर मास्टर ने कहा, और उसके साथ ही उसने क्रेडिट लगाया और फिर टोन आने पर यके बाद दीगरे कई नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ कुछ देर घंटी बजती रही और फिर रिसीवर उठा लिया गया। ब्राउन बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से ब्राउन की आवाज सुनाई दी। सुपर मास्टर बोल रहा हूँ, सुपर मास्टर ने तेज लहजे में कहा। यस सुपर मास्टर, मैं आपको ही अभी कॉल करने वाला ही था। सार डोम के आदमी एक बेहोश आदमी को यहाँ पहुंचा गए हैं और मैंने उसे जंजीरों में जकड़ दिया है, ब्राउन ने कहा। उसे जिस गैस से बेहोश किया गया है उसका एंटी गैस मौजूद है तुम्हारे पास? सुपर मास्टर ने पूछा। यस सर, ब्राउन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, मेरे आने तक उसे होश में मत लाना, सुपर मास्टर ने कहा और रिसीवर रख के वो उठने ही लगा था कि एक ख्याल के तहत उसने फोन का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। यस सर, दूसरी तरफ से उसकी सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। मैं पॉइंट फोर पर जा रहा हूँ, अगर कोई जरूरी कॉल आ जाए तो वहां फोन कर देना, वरना आम हालात में मुझे डिस्टर्ब मत करना, सुपर मास्टर ने तेज लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो सुपर मास्टर ने रिसीवर रख दिया और उठकर तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। टाइगर के तारीख जहन में इस तरह रोशनी उभरी जैसे अंधेरे में फुलझड़ी जलती है, और फिर चंद लम्हों बाद ये रोशनी फैलती चली गई और उसके साथ ही टाइगर को अपने पूरे जिस्म में दर्द की तेज लहरें सी दौड़ती महसूस होने लगी। उसकी आंखें खुली तो उसने लाशऊरी तौर पर अपने आप को समेटने की कोशिश की, लेकिन चंद लम्हों बाद जब उसका शऊर जाग उठा तो उसने देखा कि वो दीवार के साथ कुंडों में जकड़ा हुआ खड़ा है। इसके दोनों बाजू ऊपर को ऊपर करके कुंडों में जकड़े हुए थे। जब दोनों पैर भी दीवार पर नस कुंडों में जकड़े हुए, उसको परेशानी होने लगी। ये खासा बड़ा हॉलनुमा कमरा था। सामने एक कुर्सी पर गेंडे जैसे जिस्म का आदमी बैठा हुआ था। उसके कंधे चौड़े और जिस्म फैला हुआ था, चेहरा चौड़ा और थोड़ी किसी हथौड़े की मानिंद थी। वो कुर्सी पर इस अंदाज में बैठा हुआ था जैसे वो किसी मुमलिकत का फातह हो और अभी उसकी ताजपोशी होने वाली हो। उसकी नजरें टाइगर पर जमी हुई थी। उसकी कुर्सी के साथ एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का नौजवान भी बैठा हुआ था। उसकी बेल्ट से कोड़ा लटक रहा था, जबकि उसके कंधे से मशीन गन भी लटक रही थी। उसकी नजरें भी टाइगर पर जमी हुई थी। तो तुम दरअसल पाक एशियाई हो और तुम्हारा नाम टाइगर है, कुर्सी पर बैठे हुए आदमी ने अचानक भारी लहजे में कहा। तो टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। पहले तुम अपना तारुफ तो कराओ, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे सुपर मास्टर कहते हैं, काउ क्लब का सुपर मास्टर। तुम इस वक्त पॉइंट फोर पर मौजूद हो और ये ब्राउन है, इस पॉइंट फोर का इंचार्ज। तुम्हारे बारे में मुझे लॉगी ने फोन पर इत्तला दी थी कि तुमने उसे शदीद जख्मी कर दिया था और तुम वहां से निकल कर सीधे मेरे पास आ रहे हो। लॉगी ने तुम्हारा हुलिया, कदोकामत और लिबास की तफसील भी बता दी थी, चुनाचा मैंने अपने क्लब में तुम्हारे बारे में तफसीलात पहुंचा दी। तुम टैक्सी से उतरकर क्लब में दाखिल हुए तो तुम्हें मेरे हुक्म पर बेहोश करके यहाँ पहुंचा दिया गया, सुपर मास्टर ने तफसील बताते हुए कहा। तो टाइगर को पहली बार एहसास हुआ कि लोगी को जिंदा छोड़कर उसने वाकई हिमाकत की। इसे दरअसल ये ख्याल ही नहीं आया कि फोन वही कमरे में ही मौजूद था और लोगी आसानी से फोन करके उसके बारे में इत्तला दे सकती थी, लेकिन जाहिर है अब पछताने का क्या फायदा। तो तुम वो मार्को टेंस हो जिसे खुफिया समझा जाता है, टाइगर ने कहा। तो सुपर मास्टर चौंक पड़ा, उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। ये तुम क्या कह रहे हो, कौन मार्को टेंस, सुपर मास्टर ने चौंक कर कहा और फिर हैरत भरे लहजे में देखने लगा। लेकिन उसका चेहरा देखकर ही टाइगर समझ गया कि वो झूठ बोल रहा है। मुझे लोगी ने बता दिया है इसलिए अब इनकार करने का कोई फायदा नहीं है, टाइगर ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। अलबत्ता इस दौरान इसकी उंगलियां कड़ों पर बटन तलाश करने में मसरूफ थी। क्योंकि उसका हाथ उसके सर से काफी बुलंद था और शायद सुपर मास्टर और ब्राउन को ये तस्वर भी नहीं था कि इन कड़ों को इस अंदाज में भी खोला जा सकता है, इसलिए वो दोनों पूरी तरह मुतमइन थे। तुम मार्को टेंथ को क्यों तलाश कर रहे हो, सुपर मास्टर ने कहा। ताकि इसके ब्लू बर्ड नामी साइंसदानों के ग्रुप का एड्रेस मालूम किया जा सके, टाइगर ने कहा। तो अब ये बात कंफर्म हो गई है कि तुम पाकेशिया एजेंट हो। और पाकेशीय फार्मूले के पीछे आए हो जिस पर इस ग्रुप के साइंसदान काम कर रहे हैं। बहरहाल वेरी सॉरी, अब चूंकि तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं है, सुपर मास्टर ने कहा। ठीक है, मुझे इसका अंदाजा हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मरते हुए कम से कम इस हद तक मुतमईन होकर मरूं कि मैंने इस ग्रुप के बारे में तफसीलात मालूम कर ली हैं। क्या तुम ये तफसीलात बताओगे, टाइगर ने कहा। तो सुपर मास्टर बेख्तियार हंस पड़ा। मैंने सुना हुआ है कि एशियाई इंतहाई जज्बाती और अहमक होते हैं। आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे यकीन आ गया है तुमने अभी मर जाना है। मैं सिर्फ तुमसे चंद बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि सिर्फ मालूम कर सकूं कि तुम अकेले हो या तुम्हारे साथ और भी साथी हैं, और तुम मुझसे उल्टा तफसीलात मालूम कर रहे हो, सुपर मास्टर ने कहा। इसका मतलब है कि लॉगी ने झूठ बोला था कि तुम मार्को टेंस हो, तुम्हें खुद मालूम नहीं है, टाइगर ने एक और अंदाज में बात करते हुए कहा। तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहे समझते रहो। बहरहाल अब बहुत बातें हो चुकी इसलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, सुपर मास्टर ने यकलक उठते हुए कहा। उसके साथ ही उसकी कुर्सी के करीब खड़ा ब्राउन तेजी से हरकत में आ गया और उसने अपने कांधे से लटकी हुई मशीन गन उतार कर सुपर मास्टर की तरफ बढ़ा दी। अरे इससे तो यह आसानी से मर जाएगा, इसने लॉगी को शदीद जख्मी किया है, इसे इसकी इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए, सुपर मास्टर ने ब्राउन से मशीन गन लेते हुए कहा। यस सुपर मास्टर, ब्राउन ने मुख्तसर सा जवाब दिया। कोड़ा बेल्ट से निकालो और शुरू हो जाओ, जब तक इसकी रूह कोड़े खाते हुए ना निकल जाए तुमने हाथ नहीं रोकना, सुपर मास्टर ने लुत्फ लेने वाले लहजे में कहा और मशीन गन वापस रख के वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। वो शायद फितरी तौर पर अजियत पसंद था इसलिए अब उसके चेहरे पर मुसर्रत और इत्मीनान के तासुरात थे। यस सुपर मास्टर, ब्राउन ने कहा और उसके साथ ही उसने मशीन गन को दोबारा कंधे से लटकाया और बेल्ट में हुक्शुदा कोड़े को बेल्ट से अलग करने लगा, जबकि टाइगर ने भी अब एक्शन में आने का इरादा कर लिया था क्योंकि वो सुपर मास्टर जैसे बदमाशों की फितरत समझता था। वो अचानक टाइगर पर बर्स्ट चलाने का फैसला कर सकता था। टाइगर की उंगलियां कड़ों में मौजूद बटनों पर मौजूद थीं। उसके लिए असल मसला पैरों में मौजूद कड़े थे, लेकिन बहरहाल उसने एक प्लानिंग सोच ली थी। फिर जैसे ही ब्राउन ने कोड़ा बेल्ट से निकाला, टाइगर की उंगलियों ने हरकत की और हल्की सी कटक की आवाज के साथ ही उसकी दोनों कलाइयां कड़ों से आजाद हो गईं। उसी लम्हे ब्राउन ने आगे बढ़कर कोड़े को हवा में लहराया ताकि कोड़े की मखसूस आवाज पैदा हो सके, और चूंकि वो पहले ही टाइगर के करीब आ चुका था और फिर वो कोड़ा मारने के लिए उछला ही था कि टाइगर का जिस्म किसी तीर की तरह आगे बढ़ा और उसके पैर तो जकड़े हुए थे लेकिन दोनों हाथ और ऊपर वाला जिस्म आजाद हो गया था, इसलिए टाइगर ने बिजली की सी तेजी से अपने जिस्म को आगे की तरफ झटका दिया और दूसरे लम्हे ब्राउन चीखता हुआ और किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ अकब में कुर्सी पर बैठे हुए सुपर मास्टर से जा टकराया और दोनों की चीखों के साथ साथ कुर्सी के टूटने की मखसूस कड़कड़ाहट से माहौल गूंज उठा। कोड़ा ब्राउन के हाथ से निकलकर वहीं गिर गया था, जबकि उलटकर गिरने की वजह से मशीन गन उसके कांधे से अलहदा होकर साइड पर जा गिरी। टाइगर ने ब्राउन के सीने पर मखसूस अंदाज में जरब लगाई थी, उसके साथ ही वो यकलख्त अपने पैरों पर झुक गया और फिर जैसे ही सुपर मास्टर और ब्राउन कलाबाजी खाकर उठे उसी लम्हे टाइगर पैरों में मौजूद कड़ों से भी आजादी हासिल कर चुका था। उसके साथ ही वो यकलख्त सीधा हुआ ही था कि अचानक तड़तड़ाहट की आवाज के साथ ही टाइगर को यूं महसूस हुआ जैसे इंतहाई गर्म सलाखें उसके जिस्म में जगह जगह उतरती चली गई हों और वो नीचे गिर गया। उसका जिस्म इस तरह तड़पने लगा जैसे जिबा होती हुई बकरी तड़पती है। उसके पैरों के कड़े खोलने के दौरान सुपर मास्टर ने मशीन पिस्टल निकाल लिया था और उसके सीधा होते ही उस पर फायर खोल दिया। ये तो खत्म हुआ, ये वाकई खतरनाक आदमी था, सुपर मास्टर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। उसके साथ ही उसने मशीन पिस्टल वापस जेब में डाल लिया, जबकि ब्राउन एक तरफ पड़ी हुई अपनी मशीन गन की तरफ बढ़ गया। टाइगर को यूं महसूस हो रहा था कि वो वाकई मर रहा हो और कमरे में मौजूद हर चीज जैसे अपना वजूद खोती जा रही हो। कि अचानक उसके जहन पर इमरान की छवि नमूदार हुई और उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे इमरान उसे कह रहा हो कि वो इसका शागिर्द होने के बावजूद एक आम से बदमाश के हाथों हिट हो गया। और ये ख्याल जहन पर उभरते ही जैसे टाइगर के जिस्म में इंतहाई ताकतवर बर्फी रो दौड़ने लगी और उसका आहिस्ता आहिस्ता लरसता हुआ जिस्म यकलख्त एक झटके से सीधा हुआ। और दूसरे लम्हे टाइगर को सिर्फ एक लम्हे के लिए एहसास हुआ कि इसके हाथ में मशीन गन मौजूद है। उसके जहन पर अब स्याही सी छाती जा रही थी, लेकिन दूसरे लम्हे कमरा मशीन गन की तड़तड़ाहट और इंसानी चीखों से गूंज उठा। उसके साथ ही टाइगर को मैं यूं महसूस हुआ जैसे उसका सांस उसके गले में पत्थर बनकर अटक रहा हो। फिर उसके तमाम एहसास जैसे किसी गहरी दलदल में उतरते चले गए। आखिरी एहसास जो उसके जहन में उभरा वो यही था कि आखिरकार इसकी मौत का वक्त भी आ ही गया। इमरान ने काउबॉय क्लब का माहौल देखकर अपने साथियों को कार में ही बैठे रहने का हुक्म दिया और खुद वो उतरकर तेज तेज कदम उठाता हुआ क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। क्लब का माहौल इंतहाई घटिया था। वहां हॉल में औरतें और घटिया तबके के मर्द बैठे हुए थे, लेकिन फिर दिल पर पत्थर रख के वो काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। यस मिस्टर, एक औरत ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। उसके चेहरे पर इमरान को देखकर यह क्लब इंतहाई पसंदीदगी के तासुरात उभर आए थे। सुपर मास्टर से मिलना है, इमरान ने खुश लहजे में कहा। वो अभी कुछ देर पहले कहीं गए हैं, उस औरत ने जवाब दिया। कहाँ? इमरान ने चौंक कर पूछा। उसकी स्पेशल सेक्रेटरी को मालूम होगा लेकिन वो तुम्हें नहीं बताएगी, इस औरत ने कहा। मेरा नाम मार्था है और शाम को 6 बजे मेरी ड्यूटी ऑफ हो जाएगी। मैं 7 बजे होटल ग्रीफन पहुंच जाऊंगी। वो इस इलाके का सबसे शानदार होटल था, मार्था ने बाकायदा तफसील से प्रोग्राम तय करते हुए कहा। शर्त वही है कि तुम दुरुस्त तौर पर मालूम करके मुझे बताओ कि सुपर मास्टर कहाँ मिल सकता है, इमरान ने कहा। तो इस औरत ने फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मार्था बोल रही हूँ काउंटर से, मार्था ने बड़े लाड भरे लहजे में कहा। चूंकि लाउडर का बटन प्रेस नहीं था इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज इमरान तक नहीं पहुंच रही थी। सुपर मास्टर कहाँ है जूलियन? दारुल हुकूमत की एक बहुत बड़ी पार्टी उनसे मिलना चाहती है, लाखों डॉलर का सौदा हो सकता है, मार्था ने कहा और फिर चंद लम्हे खामोश रही। ओह अच्छा, फिर तो मजबूरी है। ठीक है, मैं इस पार्टी को कल का वक्त दे देती हूँ, मार्था ने कहा और रिसीवर रख दिया। तुम सुपर मास्टर से क्यों मिलना चाहते हो? मार्था ने पूछा। जैसे तुमने खुद बताया है वही बात है और तुम्हारा भी माकूल हिस्सा होगा, इमरान ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा। वो पॉइंट 4 पर है और जब वो वहां हो तो किसी से नहीं मिलता, मार्था ने कहा। क्यों, क्या पॉइंट 4 परिस्तान में है? इमरान ने कहा तो मार्था बेख्तियार हंस पड़ी। परिस्तान नहीं, स्लाटर हाउस कहो, वहां वो अपने दुश्मनों को ले जाता है और फिर उनकी उन पर तशद्दुद की इंतहा कर देता है। अब भी उसकी सेक्रेटरी बता रही है कि उसके हुक्म पर किसी एशियाई को जो अपनी शामत आने पर खुद ही यहाँ क्लब पहुंच गया था बेहोश करके पॉइंट 4 पर पहुंचा दिया गया है और फिर सुपर मास्टर खुद वहां गया है। सेक्रेटरी बता रही थी कि सुपर मास्टर को गए हुए 20-25 मिनट हो गए हैं, मार्ता ने कहा। तो इमरान एशियाई का लफ्ज सुनकर बेख्तियार चौंक पड़ा। एशियाई का यहाँ क्या काम? इमरान ने चौंक कर पूछा। मालूम नहीं, होगा कोई काम, मुझे तो सुपर मास्टर की पर्सनल सेक्रेटरी ने बताया है। तुम कल उससे मिल लेना, अब तो वही एशियाई की खाल उधेड़ने में मसरूफ होगा, मार्था ने कहा। ये पॉइंट 4 है कहाँ? जब मैं सुपर मास्टर को खुसूसी हवाला दूंगा तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुझसे मिलने पर तैयार हो जाएगा, इमरान ने कहा। तो मार्था ने फौरन पॉइंट 4 की तफसील बताना शुरू कर दी। तुम कभी गई हो वहाँ? इमरान ने पूछा। हाँ, 2-3 बार गई हूँ, वहाँ का इंचार्ज ब्राउन मुझे ले गया था, मार्था ने कहा। वहाँ सिर्फ ब्राउन ही होता है या और ज्यादा लोग होते हैं? इमरान ने पूछा। नहीं, ब्राउन वहाँ अकेला रहता है, वैसे ब्राउन 10 आदमियों से ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए तो सुपर मास्टर ने उसे पॉइंट फोर का इंचार्ज बनाया हुआ है, मार्था ने कहा। ओके, इमरान ने कहा और तेजी से मुड़कर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एशियाई कलर सुनकर उसके जहन में धमाके से होने लगे, लेकिन कोई ऐसा एशियाई उसके जहन में नहीं आ रहा था जो यहाँ पहुंचा हो। बहरहाल, अब वो जल्द अज जल्द वहां पहुंचना चाहता था। क्लब के कंपाउंड गेट से निकलकर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ इस तरफ बढ़ गया जहां उसकी कार मौजूद थी। उसके साथी कार से निकलकर बाहर खड़े थे। क्या हुआ इमरान साहब, आपका चेहरा इस कदर बिगड़ा हुआ क्यों है? सफदर ने इसके करीब आते हुए चौंक कर कहा।